हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्णव वापस अपने कैबिन में आया और धृति को फोन लगा दिया। दो तीन रिंग के बाद ही उसने कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, धृति के फोन उठाते हुए अर्णव बेचैनी से बोल पड़ा, कहाँ हो तुम अभी? अर्णव का सवाल सुनकर धृति ने सामने रिकॉर्ड रूम को देखते हुए जवाब दिया, नीचे बेसमेंट में आई हूँ। तुम वहाँ क्या कर रही हो और अकेले वहाँ क्यों चली गई? जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? अर्णव ने चौंकते हुए एक सांस में कई सवाल कर दिए। धृति की तरह से अब शांत स्वर में जवाब आया, कुछ यादें जुड़ी हैं मेरी यहाँ से, इसलिए जाने से पहले एक बार यहाँ आने की इच्छा हुई तो चली आई, और अकेले आना चाहती थी इसलिए आपको नहीं बताया। पर आप परेशान मत होइए, ऑफिस में ही हूँ मैं और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। धृति शायद उसके आवाज़ में झलकती चिंता को भांप गई थी। उसकी बात सुनकर अर्णव की आंखों के सामने वो पल घूम गया जब धृति को ढूंढते हुए वो बेसमेंट में पहुंचा था और डरी सहमी धृति उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। वो आगे कुछ कह न सका और धृति ने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद धृति अर्णव के कैबिन में उसके साथ बैठी थी। दोनों ही खामोश थे और वहाँ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्णव धृति को देखते हुए मन ही मन कुछ सोचता रहा, फिर कॉफ़ी की सिप लेते हुए सवाल किया, धृति, जाने से पहले अपनी मम्मी से नहीं मिलना चाहोगी? अर्णव को याद था कि अपनी माँ से मिलने की चाहत के कारण ही वो सृष्टि के जाल में फंस गई थी, इसलिए उसने जानकर ये बात छेड़ी। धृति के कानों में उसके शब्द पड़े और आँखें अविश्वास से फैल गई। उसने चौंकते हुए अर्णव को देखा, आप जानते हैं वो कहाँ है? अर्णव ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए हामी भरी। धृति ने बेचैन निगाहों से उसे देखते हुए तुरंत ही अगला सवाल किया, कैसी है वो? अच्छी है, कहो तो मिलवाने ले चलूँ तुम्हें। मेरे वजह से उनसे दूर हुई थी तो अब जब मुझे छोड़कर जा रही हो तो उन्हें अपने साथ ले जाना। धृति के चेहरे के भाव अब कुछ बदल गए। उसने अर्णव पर से निगाहें फेरते हुए इनकार कर दिया, नहीं, मुझे ना तो उनसे मिलना है और ना ही उन्हें कहीं लेकर जाना है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, उन्हें किसी अच्छे से वृद्धाश्रम में डाल दीजिएगा जहां वो अपने आगे की जिंदगी सुकून से बिता सकें। कर देंगे ना इतना मेरे लिए? धृति ने बड़ी ही उम्मीद से उसे देखा। अर्णव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, फिर सहमति में सर हिला दिया, जरूर, पर तुम वाकई उनसे नहीं मिलोगी? नहीं, धृति ने साफ इनकार कर दिया, शायद वो अब भी उन्हें माफ नहीं कर सकी थी। अर्णव कुछ पल गहरी सोच में खोया रहा, फिर उसने सर घुमाकर बाहर का मौसम देखा। सूरज बादलों के बीच जा चुका था, ठंडी हवाएं बहने लगी थीं, दोपहर बीत गई थी और शाम गहराने लगी थी। दिन भर दाना की खोज में घूमते पंछी अब घर लौटने की तैयारी में थे। जिनके बादल सजे थे, मौसम सुहावना हो चला था। धृति, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ? अर्णव ने मौसम को देखते हुए धृति से सवाल किया। पल भर सोचने के बाद उसने भी हामी भर दी और अर्णव उसकी हथेली थामे ऑफिस से बाहर निकल गया। अर्णव ने धृति की हथेली को थामते हुए गियर पर रख दिया। धृति ने ऐतराज़ भी नहीं जताया। गाड़ी में दोनों खामोश थे। कार अपनी रफ्तार से अनजान सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और उनके बीच मौजूद सन्नाटे में गाने के धीमे बोल गूंज रहे थे, मैं तो जिया न मरा, हाय वे दस मैं की करा, दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हथ मिले बिना ही छूट गए, कि लिखे ने लेख किस्मत ने, बार बार रोंड अखियां, तैनु जो ना वेख सखियां, खोले आए आज कुदरत ने, कट्टा मैं की वे दिन, तेरी सों तेरे बिन, मैं तो जिया ना मरा। गाने के बोल कानों में पड़ते ही अर्णव की निगाहें धृति की ओर घूम गई, जो उससे रुख फेरे बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। अर्णव का दिल बेचैन था और धृति से दूरियों के ख्याल से ही मन व्याकुल हो गया था, जिसका असर भी देखने को मिला। धृति की हथेली पर उसकी पकड़ कस गई। रुख फेरे बैठी धृति ने अपनी आंखों को भींच लिया। शायद वो अर्णव के दिल के हाल से बखूबी वाकिफ थी, पर उसका सामना करने से कतरा रही थी। अर्णव के लबों पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई और चेहरे पर बेबसी और मायूसी झलकने लगी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गाना बदल दिया, कुछ ही सेकंड बाद अगला गाना बजने लगा। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तो बांधे मन के मन से धागे, बस चले न क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तो लागे, क्यों तो बांधे मन के मन से धागे, ढूंढ ही लोगे मुझे तुम हर जगह, अब तो मुझको खबर है हो गया हूँ तेरा, जब से मैं हवा में हूँ तेरा असर है, तेरे पास हूँ एहसास में मैं याद में तेरी, तेरा ठिकाना बन गया अब सांस मेरी। गाना बज रहा था, कार उन अनजान सड़कों पर आगे बढ़ती जा रही थी। अंदर बैठे दोनों शख्स खामोश थे, पर दोनों के ही दिल बेचैन थे। दर्द अर्णव की आंखों में सुर्खी बनकर उभर आया था और धृति की झुकी पलकों के पीछे आंसुओं का समुद्र उमड़ने लगा था। बेचैन धड़कनों का शोर उनके दिल के हाल को बयां कर रहा था, पर लब खामोश थे। दोनों अपने अपने हिस्से का संघर्ष कर रहे थे। दोनों मुंबई से काफी दूर निकल गए थे। वापसी में रात गहरा गई। डिनर के लिए अर्णव धृति को जुहू बीच लेकर गया। वहां उसके साथ उसकी पसंद के पाव भाजी, गोल गप्पे, सेव पूरी से उनका डिनर किया। एक दूसरे का हाथ थामे पैदल फुटपाथ पर चलते हुए काफी दूर निकल गए। एक दूसरे का साथ भी था, तन्हाई भी थी, मौसम भी खुशगवार था, पर आज वो बात नहीं थी जो उस दिन थी। आज उनके दरमियां अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दोनों ही अपने अपने दिल की कश्मकश में उलझे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मन भावुक हो रहा था, पर दोनों ही अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश में लगे थे। धृति अर्णव के साथ रात के करीब 11 बजे घर लौटी थी। अर्णव ने घर में सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें आने में देर होगी, तो जब तक वो लौटे सब खा पीकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। धृति और अर्णव सुबह से साथ हैं, ये बात निहारिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जले पैर की बिल्ली बने वो सारा दिन घर में नाचती रही, अंदर ही अंदर किलकिलाती रही, जबकि उसके अलावा बाकी सब काफी खुश थे। इतने दिनों में धृति को अर्णव पहली बार कहीं बाहर लेकर गया था, वरना धृति यहाँ घर पर रहती और वो ऑफिस में। वो सब तो चाहते ही थे कि अर्णव धृति के साथ थोड़ा वक्त बिताए, उसे घुमाए फिराए, और आज जब अर्णव धृति को लेकर बाहर गया तो सब खुश थे। पर अभी वो इस सच से अनजान है कि उनकी ये खुशियाँ बस कुछ पलों की मेहमान हैं। धृति कमरे में जाने के बजाय उस कमरे में चली आई जहाँ उसने अपने डिज़ाइनों पर काम किया था। अर्णव भी उसके साथ ही था और दरवाजे के पास खड़ा खामोशी से धृति को ही देख रहा था। धृति ने ध्यान से उस पूरे कमरे को देखा, वहाँ हर चीज पर उसकी नज़र ठहरी थी। मन अजीब सा हो गया था। ये वो जगह थी जहाँ उसके सपनों को पंख लगे थे, और वो जो जिंदगी की आजमाइशों और अपनी परेशानियों, दुखों के बीच सब भूल गई थी, उन पंखों के सहारे उसने ऊँची उड़ान भरी थी। शायद इसलिए कुछ भावुक हो गई थी वो। हर चीज को छूने और पूरे कमरे को नज़र भर देखने के बाद उसने टेबल पर रखे गणेश जी की मूर्ति को उठाया, जो अर्णव ने उसे दिया था। कुछ पल उन्हें खामोशी से ताकती रही, फिर अर्णव की ओर पलटी और हिचकिचाते हुए बोली, गणपति महाराज की ये मूर्ति आपने मुझे गिफ्ट की थी, क्या मैं इस प्रतिमा को अपने साथ ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकती हो, पत्नी हो तुम मेरी, सिर्फ यही क्यों, मेरा जो भी है सब तुम्हारा है, तुम्हें किसी के भी लिए इजाज़त लेने या पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो चाहे वो अपने साथ ले जा सकती हो तुम। अर्णव ने सहजता से हामी भर दी। उसका जवाब सुनकर धृति के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए।
नहीं, मैं यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं लेकर जाऊँगी, ये सब आपका है, और आपसे दूर जाने के बाद मेरा इन सब पर, जो चीज़ें आपने मुझे दिलाई और जो चीज़ें आपके परिवार ने मुझे दी, मेरा उन सब पर कोई हक नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं बस अपना कुछ ज़रूरी सामान और ये मूर्ति लेकर इस घर से जाऊंगी, और आप मुझ पर कोई दबाव भी नहीं बनाएंगे, नहीं कहूंगा कुछ, आज जो तुम चाहती हो वही होगा। अर्णव ने हामी भरते हुए गंभीरता से जवाब दिया, जिसे सुनकर धृति फीका सा मुस्कुरा दी। यहाँ से निकलकर दोनों अपने रूम में चले आए। धृति चेंज करके और फ्रेश होकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, जब अचानक ही अर्णव ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। धृति एकदम से चिहोंक उठी। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। धृति अपनी कमर पर लिपटी उसकी बाहों को हटाते हुए उससे आज़ाद होने को बुरी तरह छटपटाने लगी। अर्णव ने भी उसको ज्यादा तंग नहीं किया और अपनी बाहों को उसकी कमर पर से हटा लिया। धृति झटके से उसकी ओर पलटने लगी, पर अर्णव ने उसके कंधों को थामते हुए उसे ऐसा करने से रोकते हुए गंभीरता से कहा, ऐसे ही खड़ी रहो, बस 2 मिनट। नरम लहजे में उसने इल्तिजा की, जिसे धृति ठुकरा न सकी। हालांकि उसका दिल बुरी तरह घबरा गया था, फिर भी वो यूं ही खड़ी रही। अर्णव ने उसके पीठ पर बिखरे बालों को समेटकर उसके कंधे से आगे कर दिया। धृति सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर में अर्णव को ही देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो करना क्या चाहता है। अर्णव ने अपने लोअर की पॉकेट में हाथ डाला और अगले ही पल उसकी उंगलियां धृति की गर्दन पर थिरकने लगी। धृति भौंचक्की सी अपनी गर्दन को देखने लगी, जहां अब बाउंडलेस लव इन्फिनिटी डायमंड नेकलेस चमक रहा था। गोल्ड की चेन में जड़ा वो इन्फिनिटी लव का पेंडेंट बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये तुम्हारे लिए, अर्णव ने उसके कंधे पर चिन टिकाते हुए उसके कान में सरगोशी की। निगाहें उसकी भी धृति की गर्दन में चमकते उस खूबसूरत से पेंडेंट पर टिकी थीं, जो उस पर और हसीन लग रहा था। धृति जो फटी आंखों से उस चेन की देख रही थी, अर्णव की बात सुनकर जैसे होश में लौटी और मिरर में अर्णव को देखते हुए हैरानगी से सवाल किया, टू बी कंटिन्यूड।